अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेम अवतार श्री सत्य साई।
आज इसके अंतर्गत हम श्री भगवान के जीवन काल के उस समय से जुड़े कुछ प्रसंग सुनेंगे जब अवतार घोषणा करने के बाद अनेकों प्रकार के लोगों ने तरह तरह से बाबा की परीक्षा ली थी।
हमारे स्कूल में पढ़ने वाला लड़का हमसे अधिक बुद्धिमान कैसे हो सकता है, शिक्षकगण चर्चा करते। अपने आपस के विवाद से कोई लाभ ना समझ उनमें से एक शिक्षक ने परामर्श दिया, हम सब मिलकर उधर जा उसकी परीक्षा करें, तभी पता चलेगा कि सत्य क्या है। निर्णय के अनुसार सब शिक्षक शेषम राजू के घर पहुंचे। प्रश्नों की वर्षा आरंभ हुई। सत्यनारायण ने जो प्रश्न हैं सब एक साथ पूछ लो, अनंतर मैं उन सब का उत्तर दूंगा, कह उन सब को बैठाया। प्रश्नों की झड़ी समाप्त होने पर समाप्त हुए आपके प्रश्न, कहते हुए प्रत्येक की ओर संकेत कर यह रहा आपका प्रश्न और यह है उसका उत्तर। यूं कहते हुए उसने सबके प्रश्नों का यथा योग्य उत्तर दिया। अपने प्रश्नों का यथा योग्य उत्तर पाकर सब अपनी अनुचित धारणा पर पश्चाताप करने लगे। बालक के अद्भुत अलौकिक ज्ञान को देख आश्चर्यचकित हो सब घर लौटे। उर्वा कोंडा से लौटे हुए भक्तों ने बाबा के अवतार की प्रसारणा की। उनके मुख से विवरण सुन अनेक लोग दर्शन पाकर कृतार्थ हुए, किंतु बल्लारी जिले के स्कूल इंस्पेक्टर, हेल्थ ऑफिसर, इंजीनियर, म्युनिसिपल मेंबर तथा बड़े बड़े दुकानदार आदि प्रतिष्ठित लोग इतनी महिमा सुनकर भी संतुष्ट न थे। उन्होंने शेषम राजू से आग्रह किया कि उनके गांव में भी एक गुरुवार को पूजा भजन का समारंभ किया जाए। बड़े भाई शेषम राजू ने सोचा कि चलो सत्या के आरोग्य की दृष्टि से इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेना चाहिए। पूजा भजन तो होगा ही, बालक को पकड़ नचाता हुआ यह पागलपन नया सन्निवेश, नया वातावरण तथा नए प्रदेश के अवलोकन से संभवतः कुछ कम हो जाए। प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी के खंडहरों में कुछ ही मील की दूरी पर आधुनिक हासपेट नगर बसा है। उस पुरातन राजधानी में कर्नाटक प्रदेश के गत वैभव, सनातन धर्म संरक्षण केंद्र के अवशेष चिन्ह आज भी दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे ऐतिहासिक उत्साहवर्धक स्थान का परिभ्रमण करने पर संभवतः सत्य साई पूर्व शरीर आदि की बातें भूल पुनः अपनी पाठ्य पुस्तकों की ओर आकर्षित होकर आगामी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएगा, यही सोच उसे हम्पी ले जाना निश्चित किया गया। नवरात्रि की छुट्टियों में तांगे पर सवार हो हम सब हम्पी पहुंचे। सन 1330 से सन 1560 तक के 230 वर्ष का काल शांति पर्व समझा जाता है। इस काल में धर्म की जगमगाती ज्योति बन, पराक्रम का रणस्थल बन, संगीत, साहित्य, नृत्य एवं नाट्य के संगम के समान देवी अन्नपूर्णा के भंडार सदृश, कुबेर के खजाने के समान तथा कुमार स्वामी के शिविर के समान शोभायमान हम्पी शहर सुविख्यात था। नूनिस, पेयस जैसे प्रख्यात प्रवासियों द्वारा वर्णित रत्नों की दुकानों की पंक्ति, फूलों की दुकानों, जरी की साड़ी, पीतांबर आदि की दुकानों से एक काल में शोभित उस विशाल राजमार्ग से वे गुजरे थे। प्राचीन अश्वशाला, गजशाला, रनिवास, अंतःपुर आदि के खंडहर देखे। मूंगफली का गणपति कहलाने वाला भारी गणपति विग्रह देख सब आश्चर्यचकित हुए। विट्ठल स्वामी के देवालय में जाकर दर्शन किए। मातंग पर्वत के समीप पर्णकुटी में एक उत्तर भारतीय महर्षि तपस्या कर रहे थे। सत्या को देखते ही वे उसके समीप आए और बड़े प्यार से सत्या को स्पर्श करते हुए बोले, देखिए यह बालक अन्य बालकों के समान नहीं है, इसको प्रेम और भक्ति से पालना होगा, या एक दैवी तेजपुंज है। शेषम राजू ने महर्षि की वाणी सुनी। आसुरों द्वारा पाताल में गिराई पृथ्वी को उठाने वाले वाराह के चित्र से अंकित ध्वजा को मानने वाले विजयनगर साम्राज्य के दक्षिण चक्रवर्तियों के इष्ट देव, उनकी आंखों की ज्योति, मन की शांति, भुजवल हृदयावेश, बुद्धि के उद्गम स्थान विरूपाक्ष देव के दर्शन कर कृतार्थ हुए। देव पूजा अर्चना करवाई गई। पुजारी ने नारियल फोड़ा, नैवेद्य चढ़ाया, कर्पूर जलाकर आरती उतारी। अरे अरे देखो, सत्या कैसे मंदिर के गर्भद्वार में पहुंचा। शिवलिंग के समीप ही यह लड़का कैसे खड़ा है। क्या इसी की आरती उतारी जा रही है। अर्चक भी पागल हो गया है क्या। इस प्रकार कुछ लोग चिल्ला उठे। पर वह तो हमारे साथ मंदिर में आया ही नहीं था, बाहर ही खड़ा था, बाहर जाकर देखना चाहिए। ऐसा कहकर शेषम राजू उसी क्षण मंदिर से बाहर निकले। सत्या मंदिर के गोपुर के श्रृंग की शिल्पकला का अवलोकन करता हुआ वहीं खड़ा था। गर्भद्वार में आरती को स्वीकार करने वाले विरूपाक्ष देवता बाहर प्रांगण में मनुष्य रूप में खड़े थे। सबके मन में एक ही विचार आया, निसंदेह सत्या ही साक्षात विरूपाक्ष देवता का मानव रूप है। बड़वानल के समान यह बात हसपेट में फैल गई। घटना का विवरण सुन लोगों के आनंद की सीमा न रही, उनका संशय मिट गया। बाबा के स्वागत समारंभ में वह सब आनंद और उत्साह से जुट गए। बाबा की उपस्थिति में ही उस गुरुवार का भजन कीर्तन संपन्न हुआ। भजन के मध्य ही उस सभा में उपस्थित एक क्षय रोगी को बुला उसका विभूति प्रदान कर बाबा ने उसके रोग का तुरंत ही नाश किया। उन्होंने रोगी से कहा, चलो भजन समाप्ति के पूर्व ही कम से कम एक मील तो पैदल ही चलकर वापस लौट आओ। उनके आज्ञानुसार ये अनायास ही उतनी दूर चलकर वापस लौट आया। छोटे भाई का सहज चमत्कार देखकर शेषम राजू चकित रह गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। सच है, कौन समझ सकता है इस भगत तत्व को। सत्यनारायण का दैनिक जीवन आचरण सब बदल गया। वह अनोखे ढंग से खड़ा रहता, मानो किसी की पुकार सुन रहा हो। अपने हाथों से संकेत कर बोध देता, सब माया है, सब अस्थिर है। बड़ा भाई, उसकी सहधर्मिणी या अन्य कोई लौकिक विषयों की चर्चा करते तथा उसकी हंसी छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान क्यों देते हो, इस प्रकार आलोचना करती हुई सी प्रतीत होती। सारे प्रपंच का ही गुरु कहलाने वाली इस महाशक्ति से पाठ्य पुस्तकों के ढेर का बोझ उठाने की विनती क्यों करते हो, इस प्रकार कहता हुआ सा उसका मौन। भारत तथा जगत का इतिहास उसका आह्वान कर रहा था। उस समय कुरुक्षेत्र के अपने वचन का उसे स्मरण होता और शिष्ट रक्षण, धर्म संस्थापना या अर्थपूर्ण शब्द उसके कानों में गूंजते रहते। बाबा कहा करते हैं, मैं अपने निज स्वरूप को प्रकट करने को उचित अवसर देख रहा था। तुम सबको यथेष्ट शिक्षण देने के पश्चात, अपने सत्य को जानने की मनोभूमि तैयार करने के पश्चात ही मैंने अपना स्वरूप तुम्हारे सामने प्रकट किया। सन 1940 के अक्टूबर की 20वीं तारीख को जगत की साधना तथा स्वयं संकल्प दोनों के सम्मिश्रण का सुमुहूर्त प्रारंभ हुआ। हम्पी से लौटने पर दूसरे दिन सत्यनारायण हाई स्कूल की ओर जा रहा था। उनके गांव लौटने का समाचार सुन उर्वा कोंडा के एक्साइज इंस्पेक्टर श्री आंजनेलू महाशय साइकिल पर सवार हो शीघ्र ही गलियों की राह काटते बाबा के सामने पहुंच नीचे उतर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शाला के मुख्य द्वार तक बाबा के पीछे पीछे गए। बाबा के चारों ओर उन्हें अलौकिक तेज राशि दिखाई दी। इच्छा रहित वह घर लौटे। लौटते समय वह इतने आनंद विभोर हो चुके थे कि साइकिल पर सवार होना भी भूल गए। साइकिल को ढोते ढोते उस दिव्य दर्शन के आनंद में ही मग्न हो वह धीरे धीरे घर पहुंचे। उस दिन बाबा शाला में अधिक देर तक नहीं ठहरे। लोग गति की सुधारणा का निश्चय कर कक्षा से निकलकर वे शेषम राजू के घर की ओर चल पड़े। देहरी पार करने के पूर्व ही पुस्तकों को बाईं ओर फेंक दिया। वह ध्वनि सुन भाभी सुशीलम्मा ने किवाड़ खोला। ओह, वह स्तब्ध रह गई। वे कहती हैं, सत्यनारायण की कांतियुक्त प्रभावशाली मुख को देखकर उसके दिव्य प्रकाश से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे मुख से चीख निकल पड़ी। उस साध्वी को देखते ही सत्या बोला, अब मैं आप लोगों का नहीं रहा, मैं तो अब चला, मेरा बहुत सा कार्य बाकी है। तुरंत ही घर की सीढ़ियां उतरकर सड़क पर पहुंचे। मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं, मेरा नियोजित कार्य ज्यो का त्यों पड़ा है, अब मैं चला।
आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक से बाबा के बाल्यकाल के कुछ अलौकिक प्रसंग प्रस्तुत किए गए थे।